الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دعا کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور یہ بات یاد رکھے، ایک ہے دعا کرنا، دوسرا ہے دعا لینا اور تیسرا ہے دعا کروانا. ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے کو بھی چھوڑ دیا، دوسرے کو بھی چھوڑ دیا اور تیسرے کے اوپر ہی پورا ڈیپینڈ رہتے ہیں. عارفین بیان فرماتے ہیں، خود مرغی پال لو، کب تک پڑوسی سے انڈے لیتے رہوں گے. اصل تو خود دعا کی عادت ڈالنی ہے، اصل خود دعا کی عادت ڈالنی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ادعونی، میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو. یوں نہیں کہا کہ تم دعا کرو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو پہلا درجہ خود دعا مانگنا ہے، خود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. دیکھیے یہ ہاتھ پھیلانے کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا کہ دعا سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز اللہ کی نظر میں نہیں. دیکھیے کتنا عجیب معاملہ کہ بندہ مانگ رہا ہے اور مانگنے والے کو اللہ عزت دے رہا ہے. دنیا میں کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو جیسا ہی ہاتھ پھیلانا شروع کرے تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی ایک مرتبہ کام نکال دیا، دوسری مرتبہ، پھر تو اس آدمی کے سائے سے بھی لوگ ڈریں گے کبھی کچھ لینے آئے گا. اللہ رب العزت کا یہ معاملہ نہیں ہے. بندہ جتنا مانگتا رہے گا، جتنا مانگتا رہے گا اتنا اللہ کا تقرب اسے ملتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ کی فیاضی نہیں تو اور کیا ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے اور اس مانگنے کو اللہ فضیلت والی نظر سے دیکھ رہا ہے. بندہ مانگ رہا ہے، بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہے اور اسی ہاتھ پھیلانے کو اللہ رب العزت قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی فیاضی نہیں تو اور کیا ہے. وہاں معاملہ عجیب ہے کہ بندہ نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں. دنیا میں حال یہ ہے کہ بھائی اگر مانگ لے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہاں نہیں مانگتے تو اللہ ناراض، یہاں نہ مانگے تو لوگ راضی. کتنا فرق ہے. اب یہ فرق جاننے کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے چنگل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تمام پرابلمز کا حل وہاں ہے، تمام میری ضروریات پورا کرنے والے اللہ ہے. یہ نہیں کہ نہیں جانتے، جاننے کے باوجود ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں. تو پہلا درجہ भाई खुद दुआ मांगना, खुद मुर्गी पाल लो, कब तक पड़ोसी से अंडे लेते रहोगे। वही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली बात हमेशा याद रखते हैं कि मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र दुआ मांगने की है कि मैं मांगता रहूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कबूलियत डालने ही वाले हैं। आज हमारा हाल क्या है, मांगना नहीं और कबूलियत पे नजर है, मांगना नहीं है और कबूलियत पर हमारी नजर है। अरे भाई फल दरख्त से लगा रहेगा तो इंशाअल्लाह मिठास आने की और पकने की पूरी उम्मीद है, और फल अगर कट गया दरख्त से तो जाया हो जाएगा, न मिठास आएगी न उसके अंदर किसी तरह का कोई पकने के इम्कानात रहेंगे, बल्कि जाया हो जाएगा। वह मांगते रहे भाई, फकीर का काम ही क्या है, मांगना है। फकीर का काम क्या है, मांगना है। अब देना न देना वो उनकी मर्जी की बात है, देना न देना। अब भाई हम देखते हैं हर रोजाना यहां पर भाई ये इदारों वाले आते हैं ऐलान कर रहे हैं, उनका काम क्या है भाई, ऐलान करना। उनका काम क्या है, ऐलान करना। अब उस ऐलान की कौन कितनी कदर कर रहा है वो लोगों के हाथ में, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे, बाकी का काम कुछ लोगों को करना है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भाई हमें अपनी जिम्मेदारी को निभा लेना है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना है। खुशहाली हो, फरावानी हो, तंगदस्ती हो, हालात हो या परेशानी हो या राहत और चैन सुकून वाला माहौल हो, हर हाल में अल्लाह के सामने हाथ फैलाना है। अब आगे का मामला उनके ऊपर है। अरे भाई चलो हम यूं कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, हालांकि ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन मान लो कि नहीं हुई हमारे कहने के मुताबिक, तो भाई कम अज कम उतनी देर मांगने का इबादत की शक्ल में सवाब तो मिलेगा, उतनी देर अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का इबादत की शक्ल में सवाब तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई दुआ मांगने की आदत डालिए, तो पहला दर्जा कि भाई खुद दुआ करना। दूसरा दर्जा क्या है कि भाई वालिदैन, कमजोर, यतीम, मिस्कीन, उलमा, सुलहा, जरूरतमंद, परेशान हाल, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेना। दूसरा दर्जा क्या है, पहला दर्जा दुआ करना, खुद करना, खुद मुर्गी पाल लो, कब तक पड़ोसी से अंडे लेते रहोगे, डिपेंडेंट लाइफ भूल जाओ। बात समझ में आ रही है, तो भाई अपने वालिदैन की खिदमत करे, कमजोरों की खिदमत करे, यतीमों बेवाओं की खिदमत करे, उलमा सुलहा की खिदमत करे, और इसी तरीके जरूरतमंद मोहताजों की खिदमत करे। अब अगर हम उनकी खिदमत में लग रहे हैं तो अगर चे वो अपनी जुबान से दुआ न दे लेकिन खुद ब खुद दुआ मिलती रहेगी। बात समझ आ रही है, तो दूसरा दर्जा है कि खिदमत करके दुआएं लेना। अब ये भी हमारे पास नहीं है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, तीसरा जो है वो माशाल्लाह होलसेल में पड़ा हुआ है। तीसरा जो है भाई मोहन साहब दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो, तू क्या करेगा, तू तो कर मुझ। दुआ कराने की आदत पड़ी है, दुआ भाई वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके दर्जे तीसरा है। सिर्फ ये नहीं कि मैं उसी को पकड़ ले और आगे के दो को छोड़ दे, भाई नियत करो इंशाल्लाह खुद दुआ करेंगे। नंबर दो, लोगों की खिदमत करके दुआएं लेंगे, कहो इंशाल्लाह। और तीसरे नंबर पर दुआएं करवाएंगे उसका। आज हमारा क्या है, वो जो तीसरे नंबर पे था उसी को पहले पे दे दिया, बोले उसको आगे ले लो, उसको क्या दे दो, उसको पहला नंबर दे दो, दोनों को हटाओ, भाई ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में लैस शयुन अकरम अलल्लाह मिन अद्दुआ, अल्लाह की नजर में दुआ से बढ़कर कोई फजीलत वाली चीज नहीं है। और भाई ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगली उम्मतों के सिर्फ नबियों को ये बात कही जाती थी कि आप हमसे दुआ मांगे, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे, वो नबियों को कहा जाता था। और ये उम्मत मोहम्मदिया की खसूसियत है कि नबी को नहीं बल्कि पूरी उम्मत में उमूमियत के साथ ये ऐलान किया गया कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब जो खुसूसियत अगले दौर में, अगले जमाने में नबियों की थी कि नबियों को कहा जाता कि दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, वो मामला इस पूरी उम्मत के साथ है कि भाई उमूमियत के साथ ऐलान किया कि मेरे बंदो तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। हदीस पाक में आता है कि कोई शख्स दुआ के साथ हलाक नहीं हो सकता, कोई शख्स दुआ के साथ हलाक नहीं हो सकता। और एक हदीस में है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल गए, जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए उसके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल गए। तो भाई अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत के आगोश में हमें जगह हर वक्त मिलती रहे, अगर हम ये चाहते हैं कि रब्बे कायनात की तरफ से रहम करम का मामला हमारे साथ होता रहे, तो भाई दुआ मांगने की आदत डालते रहे। इसीलिए आरिफिन बयान फरमाते हैं कि कम अज कम रोजाना 20 मिनट अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। कितनी मिनट? अब चाहे तो 20 मिनट एक साथ कर ले, चाहे तो थोड़ी थोड़ी देर में, भाई हर नमाज के बाद कुछ देर। अब हमारा हाल यह है कि भाई सलाम इस तरह फेरते हैं कि पूरा रास्ता क्लियर कर लेते हैं उसी में है। नमाज के बाद तो क्या दुआ मांगेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वो रास्ता नहीं होना, सलाम वालेकुम क्लियर बोले बाबू, यही है ना हमारा, यही है। तो क्या होगा? देखिए अजीब मामला है कि अब 5-10 मिनट किसी के लिए नहीं देने, अपने लिए ही देने, किसी के लिए नहीं देनी, अपने लिए ही देनी है। और अपने लिए वो 5-10 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है, अपने लिए। और आरिफिन बयान फरमाते हैं कि भाई दुआ मांगे तो दुआ में अपने पूरे वजूद के साथ मांगे दुआ। एक तो है दुआ मांगना सिर्फ जुबान से, अब बहुत सी मतलब होता है ऐसा कि हम क्या कहते हैं हमको भी पता नहीं। मैंने परसों बतलाया धन है कि भाई कहां कौन सा कोड लगाना मालूम नहीं है, अल्लाह हम गुनहगार है, आमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा बेशक, कहीं जीर कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंभा जोड़ा, कुछ पता ही नहीं है क्या है, खुद अपनी जुबान से क्या बात निकाल रहे वो भी मालूम नहीं है हमको। तो एक तो है सिर्फ अपनी जुबान से दुआ मांगना, एक है अपने दिल से दुआ मांगना, और तीसरा दर्जा है अपने पूरे वजूद के साथ दुआ मांगना। हमारा बदन का हर उज्व अल्लाह की तरफ मुतवज्जो, हमारा दिल भी गाफिल ना हो, हमारा दिल भी बिल्कुल गाफिल ना हो। तो हमें यह तालीम दी गई कि अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह से दुआ मांगे, अपने पूरे वजूद के साथ। भाई जब देने वाला तैयार है, मैं अपने दामन की वसात देखूं तो सही, मैं अपने दामन की वसात देखूं तो सही, देने वाला तो सारी खुदा ही देगा। जो मिल न सके ढूंढ, जो पा न सके मांग, उजड़ी हुई खेती के लिए अब्रो हवा मांग, अल्लाह से मरने की दुआ मांगने वाले, अल्लाह से मरने की दुआ मांगने वाले, इतना ही भरोसा है तो जीने की दुआ मांग। जब ये अल्लाह मौत देगा तो भाई फिर तुम मौत क्यों मांग रहा है, भलाई के साथ इस्लामी जिंदगी मांग। ये भाई हमें मौत मांगने की इजाजत नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि भाई अगर किसी को मौत मांगनी है तो इस तरह मांग सकता है, अल्लाह तू उस वक्त तक मुझे इस्लाम के साथ जिंदा रखना जब तक मेरे लिए जिंदगी बेहतर हो, और उस वक्त तू मुझे ईमान के साथ मौत देना जब मेरे लिए मौत बेहतर हो। अभी भी एफ्टी टाइम मांगने की इजाजत नहीं है। तो भाई दुआओं की आदत डालें, हमेशा एक वक्त तय करें। और दुनिया में हमने ये देखा है कि अच्छा एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई बहुत से लोगों के जहनों में ये बात हमेशा गूंजती रहती है कि हम तो दुआ मांगते हैं लेकिन कभी कोई कबूलियत के असरात तो नजर ही नहीं आ रहे, कबूलियत के असरात नजर ही नहीं आ रहे। तो भाई उसमें एक बात तो ये है कि दुआ जब भी मांगे इस यकीन के साथ मांगे कि मेरी दुआ कबूल होगी ही, शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। हमारा मामला क्या है, चलो ठीक है ये तो मांग तो मैं बाद में आता हूं आपके पास, तो अल्लाह जी कहते हैं ये अजीब मामला है, यकीन के साथ नहीं मांग रहे। अनाइंदा जन्ने अब्दी भी, मैं बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक मामला करता हूं, मैं बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक मामला करता हूं। जब भी दुआ करे इस यकीन के साथ दुआ करे कि मेरी दुआ कबूल होगी ही। नंबर दो, हराम और शुकूक और शुबहात वाले लुकमे से अपने आप को बचाए। आज हमारे ये पेट की पोजीशन अजीब है, बस जमीन हर दाना कबूल नहीं करता। जमीन जो है ये भाई जहां खेती होती है किसी जगह पर गेहूं निकलते हैं, किसी जगह पर चावल निकलते हैं, किसी जगह पर और कोई चीज, हर जगह हर जमीन में हर दाना वो कबूल नहीं होता और हर तरह की खेती नहीं होती, लेकिन हमारे पेट की जमीन अजीब है कि जायज भी हजम, नाजायज भी हजम, शुकूक व शुबहात वाला भी हजम, मजबूर की मजबूरी वाला जो भी है आने दो, बस पैसों मारो, परमेश्वर हो तेनो दास। ये अजीब जमीन है कि सब कबूल हो जाता, झूठ वाला भी चलेगा, धोखे वाला भी चलेगा, भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमजोरों की कमजोरी से छोड़ दे लाभ उठाना, कमजोरों की कमजोरी से छोड़ दे लाभ उठाना, दया धर्म से झोली भर दे, दया धर्म से झोली भर दे, छोड़ दे पाप कमाना, ये झगड़े हैं जीते जी के, ये झगड़े हैं जीते जी के, आखिर कब रसतान, चार दिनों की दुनिया सारी, चार दिनों का जीवन। अब बहुत से लोगों ने भाई मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाना वो उन्होंने अपनी जिंदगी का दस्तूर बना लिया है, अब उस लाइन से माल इकट्ठा कर रहे हैं भाई हर भाई। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखे कि भाई हमने ये दुनिया में देखा है कि जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है और किसी को ब्लड के बोतल चढ़ाने हैं तो ब्लड जिसको चढ़ाना है उससे पहले जिसका ब्लड लेना है उसके ब्लड को टेस्ट किया जाता है और ग्रुप मिलाया जाता है। अरे ग्रुप मिलाया जाता है कि नहीं, कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यहां पर ग्रुप मिलाने के बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर ग्रुप नहीं मिलता तो बोले नहीं भाई दूर रखो उसको, वो काम करने नहीं। अगर भाई है तो ब्लड ही लेकिन बगैर ग्रुप के मैचिंग के अगर मिला दिया बोले परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक मरीज को ब्लड का बोतल अगर चढ़ाना है तो उसमें ब्लड के ग्रुप को चेक किया जाता है, चेकिंग के बाद ब्लड चढ़ाया जाता है। इसी तरह जो माल हम अपनी जात पर लगाए तो माल अपनी जात पर लगाने से पहले उसका ग्रुप भी चेक कर लिया करे कि ये हराम के ग्रुप का तो नहीं है, नाजायज के ग्रुप का तो नहीं है, झूठ वाला तो नहीं है, धोखे वाला तो नहीं है, उसके ग्रुप को पूरा चेक कर लिया करे। बात समझ में आ रही है? अब अगर ब्लड बगैर ग्रुप चेकिंग के अगर चढ़ा दिया तो जान का खतरा, और माल अगर बगैर ग्रुप चेकिंग के चढ़ा दी लगा दिया तो ईमान का खतरा। बात समझ में आ रही है? अब यहां तो सब चल रहा है। हदीस पाक में आता है एक आदमी ने 10 दिरहम का कुर्ता पहना, 1 दिरहम उसमें हराम का और 9 दिरहम हलाल के हैं, तो वो 1 की बुनियाद पर सब खत्म, सब हराम का हो गया। अब हम लोग अपने सोर्स ऑफ इनकम पे नजर करें क्या है, जायज जो भी, बस आने दो, बस हमारा जीव मामला है। بھائی یہ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ کہ بندہ حرام سے بچنے والا ہو, شکوک و شبہات کے لقموں سے بچنے والا ہو. اور یاد رکھنا, شکوک و شبہات اور حرام کے لقمے پیٹ میں جانے کی بنیاد پر بنیادی نقصان تو یہ ہوگا, اللہ رب العزت عبادت کی توفیق چھین لیں گے. اللہ کیا کر لیں گے؟ عبادت کی توفیق چھین لیں گے. ارے بھائی, ویسے گاڑی کے اندر اگر بھائی پیٹرول کی ٹنکی میں اگر کوئی پانی ڈالے تو کیا اس سے گاڑی چلے گی؟ اس گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ٹنکی میں پیٹرول ہی ہونا چاہیے, اور پیٹرول بھی صاف ہونا چاہیے, کچرے والا نہیں, ورنہ پھر رک جائے گی. یہی معاملہ یہاں پر, یہی معاملہ. تو بھائی ہم اپنے سورس آف انکم, اپنے آمدنی کے ذرائع اور آمدنی کے وسائل پر بھی غور کرے, اس کو حلال اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے, تو دعاؤں میں انشاءاللہ قبولیت آئے گی. اچھا, ایک اللہ صفی دعا میں ایک بات یہ ہے بھائی, ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے, دعا کے الفاظ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. ہمیں حکم کیا ہے کہ بھائی دعا مانگو, جو سی بھی زبان میں مانگ سکتا ہو دعا مانگنے. اب ہم لوگ کیا ہے بھائی, اس طرح کو رٹے رٹائے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں, تو ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے, دعا کے الفاظ صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یاد رہے, ایک اللہ والے کو کسی نے پوچھا کہ حضرت میں برسوں سے دعا مانگتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہو اور اس کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے, ایسا کیوں؟ انہوں نے عجیب جواب دیا کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند ہے, اس لیے اللہ رب العزت قبولیت کے آثار ظاہر نہیں کر رہے. اللہ کو بھائی, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی, چھوٹا بچہ اب اگر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کو چل چل کے پپا یا جو بھی جو کہتا ہو, اب اس کے ہاتھ میں ٹرافی رہیں گے, چل چل بول بیٹا, چل پپا کے فلا کے, پھر ایک بار کے, پھر میں دیتا ہوں, پھر ایک بار کے, پھر ایک. اب اس کا بولنا اچھا لگتا ہے, اس کا بولنا اچھا لگتا ہے, تو فوری طور پر اس کو نہیں دے دیا جاتا, بلکہ بار بار وہ کہا کہ میں اپنی وہ توتلی زبان سے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے وہ جو الفاظ نکالتا ہے تو باپ کو زیادہ مزہ آتا ہے, تو اس کی بنیاد پر وہ دینے میں تاخیر کرتا ہے. اس لیے روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب ایک شخص وہ ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر کے یہ جو مانگتا ہے اس کو وہ دے دو, اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا ہے, دے دو اس کو, اس کو دے دیں گے یہ مانگنا بند کر دے گا. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں, فرشتوں اس کی دعا کی قبولیت میں تاخیر کرنا, اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیے اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے, جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی, ہماری دعا کیا ہوئی, قبول ہو گئی. دوسرا درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ ہم نے جو دعا مانگی تو جو چیز مانگی اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے, بلکہ اس کی برکت سے کوئی آنے والی بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں, حالانکہ وہ مانگنے کی برکت سے ایک مصیبت ٹلی. اور نمبر تین, بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں, پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی اس دعا کا جب اجر و ثواب دیں گے تو بندہ کہے گا, اے اللہ میں نے تو یہ کوئی کام کیا نہیں تھا, یہ کون سے عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ رب العزت کہیں گے, میرے بندے تو نے فلاں وقت فلاں موقع پر جو دعا مانگی تھی اس دعا کو میں نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا, اور یہ اسی کا اجر و ثواب ہے. بندہ اس وقت کہے گا, कि काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल न होती कितना अच्छा रहता, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने की आदत है। दुनिया में क्या कह रहा है कि कबूल नहीं हो रही है दुआ, और वहां क्या कहेगा कबूल न होती तो अच्छा। तो भाई मांगने की आदत डालें। वही अकबर इलाहाबादी वाली बात याद रखे कि अकबर जो मांगना है मांग ले खुदा से, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाता। अपने हर मसाइल को हर प्रॉब्लम्स को अल्लाह के सामने रखे, इधर उधर के चक्करों में पड़ने की बजाय, गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की बजाय, खिलाफ शरा उमूर पर तवक्कुल करने की बजाय, हम अल्लाह ही के सामने हाथ फैलाने की आदत डालें। अपने छोटे से छोटे मसले को भी खुदा के सामने ही रखें। हदीस पाक में आता है, तेरे जूते का तस्मा टूट जाए तब भी तू खुदा से मांग। जूते का तस्मा टूट जाए तब भी तू खुदा से मांग। हां इतना जरूर है कि भाई ये नहीं कि सिर्फ दुआ पर फिर एतमाद करके बैठ नहीं जाना। याद रहे जिस तरह दुआ करना सुन्नत, इसी तरह सबब इख्तियार करना ये भी सुन्नत। आप अलैहिस्सलाम ने बदर के मौके पर हजरत साहबाए किराम को मैदान बदर में उतारा और आप अलैहिस्सलाम खुद दुआ में लगे। इससे उलमा ये बात साबित करते हैं कि सबब को इख्तियार करके दुआ से बेनियाज नहीं हो सकते, और दुआ को इख्तियार करके सबब से बेनियाज नहीं हो सकते। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत साहबाए किराम को मैदान में उतारा, खुद दुआ में लगे, पता चला जितनी जरूरत दुआ करने की है उतनी ही जरूरत सबब इख्तियार करने की। आज हमारा मामला क्या है, दुनिया का पूरा मामला असबाब के हवाले और दीन का पूरा मामला दुआओं के हवाले। भाई नमाज दुआ करो ना, इंशाल्लाह कल की दुआ करो ना। कभी किसी को देखा भाई खाना खाना, बोले इंशाल्लाह दुआ करो ना। कार बस दुकान खोली आप बस दुआ करो ना, कोई कहता है ऐसा? तो दुनिया का पूरा मामला असबाब के हवाले और दीन का पूरा मामला दुआओं के हवाले। दुनिया में तो समझ में आ रहा है कि भाई मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और दीन के मामले में समझ में नहीं आ रहा। तो भाई दुआओं की आदत डालें। अपने हर मसले को, खुद का मसला हो, औलाद का मसला हो, बीवी का मसला हो, औरतें सुन रही अपने शोहर के मसाइल हो, अपने घर वालों के मसाइल हो, सब अल्लाह के सामने रखे। सब किसके सामने रखे? अल्लाह के सामने रखे, और इस इस्तेहजार के साथ रखे कि मेरी दुआ कबूल होगी ही। कबूलियत दुआ में हमें शक नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को हर वक्त उससे मांगने की अल्लाह ताला तौफीक अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्ली वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। ए अल्लाह बेशक हम गुनहगार है, खताकार है, महापापी है। मेरे अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह हम दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं गए हैं अपनी खूबियां रखते हैं, उन लोगों के सामने अपनी खूबियां और अच्छाइयां रखते हैं। मेरे अल्लाह एक तेरा ही दर ऐसा दर है कि जहां अब हम अपनी खामियां रखते हैं और अपनी कोताहियां रखते हैं। ए अल्लाह एक तेरा ही दर ऐसा है, हर जगह जाते हैं तो कहते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा ये मकाम है, लेकिन मेरे अल्लाह जब तेरे सामने हाथ फैलाते हैं तो तू तो हमारी हर पोजीशन को जानता है, हमारा क्या हाल है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हमारी झोली में गुनाह के अलावा कुछ नहीं है, गुनाह के अलावा कुछ नहीं है। ए अल्लाह आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए। ए अल्लाह माफ कर दीजिए, ए अल्लाह माफ कर दीजिए। ए अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ फरमा, हमारी बीवी बच्चों को माफ फरमा, हमारी ऊपर नीचे की पीढ़ियों को माफ फरमा, हमारे जिंदों को माफ फरमा, हमारे मरहूमीन को माफ फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे, गुनाहों की नफरत हमारे दिलों में डाल दे, नेकियों की रहमत और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अपनों को हमसे राजी कर ले। है, तू अपने से अल्लाह को तू अब हमसे राजी हो जा, अपनों को हमसे राजी कर ले, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। इलाही अंत मकसूदुना वरिदा का मतलूबुना फातिना मोहब्बतक व मारिफतक। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत हमें दे दे, अपनी मारिफत हमें दे दे, अपना इश्क हमें दे दे, अपनी निस्बत हमें दे दे। मेरे अल्लाह दवा में दिक्र और दवा में ताअत की तौफीक नसीब फरमा, दवा में दिक्र और दवा में ताअत की तौफीक नसीब फरमा। ये अल्लाह तेरा एहसान हुआ, मेरे अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने हमें मुसलमान बनाया। ए अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि ए अल्लाह गुनाहों के बावजूद ए अल्लाह तूने रोजे रखने की हमें ए अल्लाह तौफीक दी। तेरा एहसान हुआ मेरे अल्लाह गुनाहों के बावजूद तूने मस्जिद में आने की हमें तौफीक दी। मेरे अल्लाह तू चाहता तो मस्जिद के गेट पर किसी फरिश्ते को खड़ा कर देता कि जितने भी गंदे और नापाक है उनको भगाओ, यहां से भगाओ। मेरे अल्लाह आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ए अल्लाह हमने दुनिया में ये देखा है कि अगर हम किसी जानवर को पालते हैं और उसके बदन पे गंदगी लगी हुई होती है तो उस जानवर को अपने करीब आने नहीं देते, या अपने आप को उस जानवर के करीब नहीं ले जाते, बल्कि यूं कहते हैं पहले इसकी गंदगी को साफ करो, बाद में उस जानवर को मेरे पास लाओ। मेरे अल्लाह आप सबसे ज्यादा पाक आप ही है, पाक होने के बावजूद ए अल्लाह हम तो इतने नापाक है कि सर से लेकर पेट तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। आपने ए अल्लाह पाकीजा जगह मस्जिद में ए अल्लाह आने की तौफीक दी। ए मेरे अल्लाह आपने हमको नहीं भगाया, आपने हमको नहीं भगाया। ए अल्लाह उस मोहब्बत का हम तुझे वास्ता देते हैं, ए अल्लाह इस मोहब्बत का हम तुझे वास्ता देते हैं। ए अल्लाह आप हमें गुनाहों से पाक साफ कर दीजिए, आप हमें गुनाहों से पाक साफ कर दीजिए। ए अल्लाह हमारी आंख को भी पाक कर दीजिए, हमारी जुबान को भी पाक कर दीजिए, हमारे कान को भी पाक कर दीजिए, हमारे दिमाग को भी पाक कर दीजिए, हमारे हाथ को भी पाक कर दीजिए, हमारे पेट को भी पाक कर दीजिए, हमारी शर्मगाहों को भी पाक कर दीजिए, हमारे पैर को भी पाक कर दीजिए। ए मेरे अल्लाह हमारा पूरा वजूद पाकीजा बना दीजिए, हमारा पूरा वजूद पाकीजा बना दीजिए। ए करीम करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा, हमारी जायज तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, बे औलाद को नेको साले औलाद अता फरमा, बे जोड़ को नेको साले जोड़ा मरहमत फरमा, जो कर्ज में डूबे हैं उनके कर्ज की अदायगी की शक्ल सूरतें और असबाब पैदा फरमा। ए करीम हमें अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बना, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह इस जमाने में बहुत से वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान है, परेशान है मेरे अल्लाह, परेशान है, न कह सकते हैं न सह सकते हैं। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह उन बच्चों को अपने वालिदैन की तरफ मुतवज्जे फरमा, उन बच्चों को जो बच्चे अपनी ख्वाहिशात में आकर ए अल्लाह वालिदैन से बिछड़ चुके हैं, दीन से बिछड़ चुके हैं, मेरे अल्लाह उन बच्चों को फिर एक बार अपने वालिदैन तक पहुंचा दे, और वालिदैन के वास्ते से मेरे अल्लाह तू उन बच्चों को तुझ तक पहुंचा दे, तुझ तक पहुंचा दे। ए अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह तू उन्हें फरमाबरदार बना, उन्हें फरमाबरदार बना, जो भी औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा, साहिब औलाद की औलाद को आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह हमारी जायज तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमा। ए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रख, और जब तू हमें मौत दे ईमान पर मौत दे, मेरे अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमा, ईमान वाली मौत अता फरमा, सकरात मौत पर हमारी मदद फरमा, गबरात मौत पर हमारी मदद फरमा। मेरे अल्लाह हम तमाम की जायज तमन्ना और मकासिद को पूरा फरमा, करने के काम करने की तौफीक अता फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वकिना अज़ाब النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا لا إله إلا الله نستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك بك من سخطك وغضبك والنار ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار لا إله إلا الله نستغفر الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا اے اللہ ہماری جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما ہماری زندگیوں کو چین سکون والی زندگی بنا ہمارے گھر کے ماحول کو چین سکون والا ماحول بنا میرے اللہ ہمارے گھر کو حضرات صحابہ کرام کے گھروں کی جھلک عطا فرما حضرات صحابہ کرام کے گھروں کی جھلک عطا فرما اے اللہ ماہ مبارک کی رحمتوں سے برکتوں سے مغفرت سے اللہ تمہارا مال فرما میرے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما تلاوت قرآن کو قبول فرما صدقہ خیرات کو قبول فرما اے اللہ روزانہ کی ہماری مجلسوں کو قبول فرما تمام کار خیر کو قبول فرما بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ اہل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب.